शांति। कल शाम में हमने दीदी जी से अष्ट शक्तियों एट पावर्स के बारे में डिटेल में जाना। आज का जो सेशन है हमारा टाइम साइकिल, एटर्नल टाइम साइकिल क्या है, कैसे चलती है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका बेनिफिट अभी के स्टेज का या अभी के समय का बेनिफिट क्या है, ये आज हमें अनीता दीदी मार्गदर्शन करेंगे। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। तो आज का अभी का समय फैसला लेने का समय है। ध्यान से इस सेशन को सुनेंगे और इसकी जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते नोट्स भी लेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ में हम अनीता दीदी का पुनः स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम मीन्स मैं आत्मा, शांति मेरा ट्रू रिलीजन है। कुल मिला के शांति मेरा धर्म है। ओम शांति मीन्स मैं एक शांत आत्मा हूं, ये एक यूनिवर्सल रिलीजन हम एक्सप्रेस करते हैं और अपना डेजिग्नेशन भी एक्सप्रेस करते हैं। तो आज जब भी एक दूसरे से मिलो, पर्पसली जरूर बोलना ओम शांति, और जब बोलना तो पहले फील करना अपने माथे पर शांत आत्मा, और दूसरे के भी माथे पर देखना शांत आत्मा। तो ऐसा सोच के बोलना ओम शांति, जैसे अपने को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मैं एक शांत आत्मा हूँ। सामने वाला बोलता ओम शांति, मैं भी एक शांत आत्मा हूँ। पसंद आया ऐसा विश करना? पसंद आया ये करना है, ठीक है। आज हमने समय के बारे में समझना है। टाइम इज द मोस्ट सेंसिटिव ट्रायर ऑफ द यूनिवर्स। एक सेकंड भी गंवा दिया, कुछ मर्जी कर लो, कोर्ट केस कर दो, कुछ भी कर दो, करोड़ों रुपया दे दो, वापिस नहीं आता है। और इम्पार्शियली भगवान ने ये टाइम सबको एक जैसा दिया है, 24 आवर्स इन ए डे। गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, सबको इम्पार्शियली बराबर दिया है। इसलिए कहते हैं टाइम इज द मोस्ट इनइलास्टिक थिंग इन दिस वर्ल्ड। आप इसका कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको सदुपयोग कर सकते हैं। और समय का सदुपयोग करने वाले ही दुनिया में महान कहलाते हैं। हर एक वक्त की अपनी जरूरतें, अपनी आवाजें होती हैं। पिछले कुछ वर्षों कॉल ऑफ द टाइम के नाम से हमारे टॉपिक्स बहुत सब तरफ डिमांड में आए। कॉल ऑफ द टाइम, कॉल ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर। इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में ग्रह, नक्षत्र और सितारों में भी विश्वास किया करते हैं। उसी हिसाब से हमारे कैलेंडर डिसाइड होते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, सितारे अपने में बेजान हैं, पर उनमें जान, उनमें करंट भरने वाली हम लिविंग बींग्स हैं। तो हमारे जो भी कर्म होते हैं वो ग्रह सितारों तक जाकर पहुंच करके उनके डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं, और उस डायरेक्शन को ज्योतिषी लोग पढ़ लेते हैं और पढ़कर बताते जी आपका फलाना ग्रह ठीक है, फलाना खराब है। वो खराब और ठीक भी कैसे हुआ था, मैंने ही करंट भेजा था, अपना करंट बदल दूं तो उनकी दशा और दिशा फिर से बदली जा सकती है। लेकिन कहते हैं जो वक्त के साथ चलता है वो फूल है, जो वक्त से पिछड़ जाता है वो रास्ते की धूल है। तो हम फूल बनने वाले सारे यहाँ बैठे हैं, वक्त की आवाज सुनकर वक्त के साथ चलने वाले। वक्त और एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। कहते हैं एक बार एक पेड़ पर जंगल में एक तोता, एक मैना बैठे थे। तोता मैना की कहानियां सुनाते हैं ना बच्चों को, तोता मैना आपस में बात करते हैं। तो वो दोनों भी आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पेड़ की, जहाँ वो ऊपर बैठे थे, उनसे नीचे वाली डाली पर एक बंदर और एक बंदरी भी बैठे थे। तोता बोला मैना से कि अभी इतने सुंदर ग्रह, नक्षत्र, सितारे, ऐसा मेल हुआ हुआ है, ये बंदर और बंदरी अगर इसी पेड़ से अभी कूद जाए इसी सेकंड, तो दोनों बहुत सुंदर राजकुमार और राजकुमारी बन सकते हैं। बंदर ने भी सुना, बंदरी ने भी सुना। बंदरी कहती मैं तो कूदूंगी, बंदर कहता है झूठी बातें होती है, ऐसे ही पक्षी बोलते रहते हैं, कोई विश्वास मत करना। बंदरी मानी नहीं, कूद गई। जैसे ही जमीन को टच किया उसने, बहुत सुंदर राजकुमारी बन गई। और थोड़ी देर में ही, कुछ सेकंड्स में ही, सामने से एक राजकुमार घोड़े पर जा रहा था, दौड़ता हुआ। वो अपने राज्य में जाना था, उसका राज्याभिषेक होना था, राजा बनना था उसको। उसने देखा पेड़ के नीचे इतनी सुंदर राजकुमारी, घोड़ा रोका, साथ बिठाया, चल तेरे को रानी बनाऊंगा, दौड़ाता ले चला। बंदर देख रहा, मेरी बंदरी राजकुमारी बन गई, गई राजकुमार के साथ, मैं रह गया, मैं भी कूदता हूं। अब वो वेला निकल चुकी थी, ग्रह बदल गए थे, उसने भी जंप किया। अब वो तो राजकुमार बना नहीं, पेड़ बहुत ऊंचा था, टांग टूट गई, अब दौड़ नहीं सकता है। उसके आगे से एक मदारी जा रहा था, बंदर नचाने वाला। उसने देखा इतना मोटा बंदर नजदीक आया, ये दौड़ ही नहीं सकता था, टांग टूट गई थी। अपने साइकिल पर बिठाया, डुगडुगी बजाता ले चला, शहरों में नचाऊंगा तुझे। तो कुछ घड़ियों का ही अंतर था, थोड़े मोमेंट्स का, घड़ी तो बड़ी होती है। एक राजकुमारी बन गई और एक मदारी का नाचने वाला बंदर बन गया। ऐसी ही कुछ विशिष्ट सूचना समय के बारे में आपको मिलने वाली है आज। उस पर डिसीजन हम सबको लेना है कि इस वेला के अंदर मैंने क्या करना है। इसलिए ये लेसन दिया जा रहा है, वरना तो ओनली टाइम, साइकिल पढ़ाना, हम कोई जियोग्राफी तो नहीं पढ़ाने वाले आपको उस तरह की, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल फैक्ट्स है, फाइनल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ है, नोबडी कैन डिनाई, उसको समझ कर उस पर चलना होता है। इसमें एक साइकिल दिखाया सामने, ये टाइम साइकिल है, ये इतना बड़ा टाइम साइकिल आपके सामने हमने रखा है, जो हमारी लाइफ के बार बार घूमता है। लाइफ के बाहर बाहर घूमने का मतलब है हमारे से बहुत बड़ा है, कई सेंचुरीज से और रिटन हिस्ट्री से भी बड़ा है। इसलिए बहुत बार इसको हम जान नहीं पाते। छोटे छोटे साइकिल तो हम सब जानते हैं, रोज देखते हैं। सेकंड्स सबसे छोटा यूनिट ऑफ टाइम है, 60 सेकंड्स से एक मिनट बनता है, रोटेट करता है, उसका भी एक साइकिल है। 60 मिनट्स का एक आवर रोटेट करता है, साइकिल है। और 24 आवर्स का एक डे, उनका भी एक साइकिल है। फिर 7 डेज वीक, उसका भी साइकिल है। रिपीटिशन हो रही है सब में, सेकंड्स रिपीट करते हैं मिनट हो जाता है, मिनट्स रिपीट करते हैं आवर हो जाता है, आवर्स रिपीट करते हैं डे, डे रिपीट करता है तो वीक, वीक रिपीट करते हैं तो मंथ, ईयर, ईयर, सेंचुरीज। फिर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, बट व्हेन इट रिपीट्स, हाउ इट रिपीट्स, नोबडी नोज। हाँ, कहने में आता है हिस्ट्री रिपीट करती है, घटनाएं घूम घूम के वापस आती हैं, लेकिन एज इट इज आती हैं, सेम साइकिल रिपीट होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। ये छोटे छोटे साइकिल है दुनिया के, जो हिस्ट्री में आ गए, एक बहुत बड़ा साइकिल है जिसमें ये सब छोटे साइकिल आते हैं। उसमें कुछ नेचुरल लॉज वाले साइकिल भी हैं। रिपीटिशन ये नेचुरल लॉ है, जैसे ईयर्स रिपीट करते हैं, ऐसे एक लाइफ स्पैन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा रिपीट करता है अपने आप को, अगेन एंड अगेन, लाइफ आफ्टर डेथ आफ्टर लाइफ रिपीट करता है, सवेरा दोपहर शाम रात रिपीट करता है। ऐसे ही मौसम में भी साइकिल्स होती है, मौसम में भी हम देखते हैं, बरसात होती है, पानी जाता है सागर में, इवेपोरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेन्स होती है, साइकिल है, बीज डालो, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फूल फल बीज, फिर से बीज गया जमीन में, फिर से साइकिल चलता है ना। इन सब चीजों का एक साइकिल रहता है, तो साइक्लिक लॉ है, हम सबके ऊपर भी परफेक्टली लागू होता है एक साइक्लिक लॉ। इस बड़े साइकिल में भी और ये छोटे साइकिल्स भी हम सब पर अप्लाई होते है। बड़ा साइकिल कैसा है? अबाउट सेम नेचुरल स्टाइल। सेम नेचुरल स्टाइल मीन्स क्या? नेचुरल लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहता है? लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है हर चीज फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर्ड होती है ना। डिसऑर्डर टू ऑर्डर अगेन साइकिल होता है, लेकिन हर चीज को पहले ऑर्डर टू डिसऑर्डर होना है। और लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है क्यों नई से पुरानी होती है हर चीज? क्योंकि हर चीज के अंदर एटम्स होते हैं और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और उसके अंदर एक एक्टिविटी एक गति एक मोशन ऑलवेज चलता रहता है और वो मोशन चीज को नए से पुराना बना देता है। जस्ट एज ये चेयर है, हम इसको यूज नहीं भी करें, चेयर टेबल दिस बिल्डिंग 50 साल छोड़ दें, 100 साल छोड़ दें, क्या होगा उसके बाद? ये चेयर एज इट इज मिलने वाली है? हो सकता है मिले ही नहीं, मिट्टी में मिल जाए, सब भुर जाए। ये बिल्डिंग 100 साल बाद हो सकता है मिट्टी का पहाड़ मिले या रियुंड कुछ ईंट पत्थरों के ढेर मिले, क्योंकि हर एक के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर एक मोशन है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा के अंदर भी एक मोशन है, एक गति है। आत्मा भी स्टार्ट होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, ऐसे यूनिवर्स का भी होता है। अब इन दोनों के बारे में एक बात सोच लेते हैं, सोच के देखिए, जहां आत्माओं का स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, ऊपर के देश से परमात्मा ने आत्माएं धरती पर भेजी होंगी, वो कैसी रही होंगी? सिंपल लैंग्वेज में पूछती हूँ, बहुत अच्छी या बहुत खराब? भगवान ने ऊपर से दुनिया में भेजा ना, तो हम यहां से पहले ऊपर थे, तो ऊपर कैसे रहे होंगे? पापी कपटी इगोइस्टिक बहुत दुखी, ऐसे पॉसिबल? पॉसिबल नहीं ना। इसलिए कहते हैं गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज, इन हिज ओन इमेज, हम उसके बच्चे उसके जैसे धरती पर उतरे थे। धरती एट फर्स्ट हमारे शरीर बनाती है, कैसे वाले बनाएगी? एट फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन बहुत गड़बड़ वाला या बहुत बढ़िया वाला? कैसा कंपोजिशन होगा? बहुत बढ़िया वाला होगा ना, गड़बड़ तो नहीं ना। परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट बॉडीज, और उन दोनों का कंपोजिशन शरीर और आत्मा जब मिलेंगे तो कैसे रहे होंगे? शुरू शुरू में कैसे रहे होंगे? हर नर नारायण हर नारी लक्ष्मी, परफेक्ट कॉम्पोजिशन, गॉड मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। हमारे भारत की अप्रिसिएशन में गीत गाते हैं, कैसा था एंशंट इंडिया, कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, है नहीं था, जहां हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। ये बनाई हुई गप नहीं है, बहुत बड़ा सच है, क्योंकि भगवान ने दुनिया बनाई और इंडिया एंशियंटेस्ट प्राचीनतम सबसे पहली रचना भगवान की ये भारत है, और यहाँ हर नर नारायण बना था, हर नारी लक्ष्मी बनी थी। सामने ये टाइम साइकिल देखिए, और ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। इसमें आप सबके राइट साइड पर एक स्क्वाड्रन दिखाई दे रहा है गोल्डन शेड में, उस पर लिखा हुआ है सत्य युग गोल्डन एज, सत्यता का युग। सत्यता प्रधान है, सत्यता चरम सीमा पर है। आत्मा में 7 क्वालिटीज 7 एनर्जीज फुल है, इसलिए उसको सतो प्रधान कहते हैं। सत्यता भी 100% है और आत्मा की 7 एनर्जीज भी फुल फोर्स में 100% है। तो युग का नाम आ गया सत्युग, सत्यता का युग, सत्यता ऑन द टॉप, इसलिए उसको गोल्डन एज भी कहा गया। गोल्ड जैसा प्योर एकदम, ऐसा आत्माओं का जीवन था। टाइम साइकिल आगे चला, जैसे एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, सवेरा दोपहर शाम रात, जीवन के 4 पक्ष होते हैं, बचपन किशोरावस्था जवानी बुढ़ापा। ऐसे ही ये 4 पक्ष हैं इस सृष्टि चक्र के, वो भी कैसे कह सकते हो, सवेरा दोपहर शाम रात। पहला था गोल्डन एज सत्ययुग, समय बीता, समय बीतते बीतते एक पक्ष बीतने पर, एक हिस्सा सृष्टि चक्र का बीत जाने के बाद, बचपन पूरा हो जाने के बाद, जो किशोरावस्था आती है वो सिल्वर एज है। सिल्वर एज में ऊपर परम धाम से आत्माएं और भी ऐड हुई हैं, पहले वाली भी चली आ रही हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा है, एक नाटक है। नाटक में फर्स्ट सीन में ही सारे एक्टर इकट्ठे नहीं आ जाते, बारी बारी आते हैं, जैसे जैसे उनका रोल होता है। होम ऊपर है, स्वीट साइलेंस होम, और ये स्टेज है। सिल्वर एज में और सोल्स ऐड हुई, पर जो पहले वाली चली आ रही थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एंट्रोपी, जैसे एटम के अंदर एक मोशन है तो वो डिटोरिएट हो रहा है, ऐसे ही आत्माएं भी, कोई पाप नहीं किया गोल्डन एज में क्योंकि 7 एनर्जीज से फुल थी, लेकिन उनकी बैटरी डिप्लीट हो रही है थोड़ी 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 थोड़ी। गोल्डन एज में आत्माएं 100% प्योर थी, सारी एनर्जीज 100% फुल थी, और जब सिल्वर एज में आते हैं तो 85% रह जाती है प्योरिटी। तो गोल्डन एज की प्योरिटी को बोलेंगे 16 कला संपूर्ण। 100% मीन्स 16 कला, जैसे 1 रुपया, 1 रुपये में बोलते हैं 16 आना, आधा रुपया 50 पैसा तो बोलेंगे 8 आना, उसका 1/4 तो 4 आना। तो ऐसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ 16 कला के बजाय 14 कला रह गई। 16 आना पवित्र थे हम पहले 100%, फिर 14 हो गए, ज्यादा डिटोरियोरेट नहीं हुए। जैसे मकान बहुत नया था, ब्रांड न्यू, जल्दी में 1-2 साल में पुराना टूट फूट नहीं हो गया, पर वो चमक नहीं रही, थोड़ा मैल आ गई, थोड़ा डल हो गया। तो त्रेता युग भी थोड़ा डल हो गया है, पर इसको हम दुनिया की दोपहर भी कहते हैं, नून टाइम। अब नून टाइम आप देखो, जो सवेरा होता है नून टाइम में, सवेरे से ज्यादा ब्राइटनेस होती है, ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं, ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई पड़ती है बारियां मोमेंट्स। इवन देन जो बात सवेरे में होती है, जो बात सवेरे में होती है वो बात दोपहर में नहीं होती है। सवेरे को ओजोन गैस मिलती है, फ्रेश होते हैं, जो ताजगी होती है, जो उस टाइम पर कंसंट्रेशन हम कर पाते हैं। कहते हैं अभी तो ये रिसर्च होके प्रूव हो गया है कि सुबह 4 से 5 के बीच के टाइम में अगर कोई अपने को प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करे तो उस टाइम हमारा हार्मोनल सिस्टम अमृतमय हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो आगे पीछे पूरे 23 घंटे में नहीं होते हैं, जिनमें बड़ी भारी हीलिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए आपने कल कईयों का सुना, मेडिटेशन सीखने से या आने से ये बीमारी छूट गई, वो नशा छूट गया, वो आदत बदल गई, क्योंकि उस टाइम अमृतमय परमानंद के ब्लिसफुल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो जो ब्लिस एक बार एक्सपीरियंस कर लेता है, इंटरनल ट्रू ब्लिस, उसके बदले में किसी भी तरह का त्याग उसको करने की जरूरत हो, डैम इजी हो जाता है। डैम इजी, जैसे कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अंदर से इतना मिलने की फीलिंग आती है, जो नेगेटिविटीज आराम से छोड़ी जा सकती है। इसलिए मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आप सबको अमृत वेला करने के लिए कहा जाता है। हाँ, अभी यूज टू नहीं होते है तो थोड़ी सुस्ती मिक्स होती है, उतना मेडिटेशन करना नहीं आता, इवन देन आदत तो डालनी है ना, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस कराते है। फिर भी फील करते होंगे सवेरे सवेरे का समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग देता ही देता है। नहीं तो हो सकता आप में से कईयों ने तो कभी सनराइज भी ना देखा हो पहले, ऐसे लेट लतीफ भी बहुत सारे होते हैं। अब पूछूंगी नहीं जिन्होंने नहीं देखा। तो ये दोपहर है, सिल्वर एज, तीसरा प्रहर आता है सृष्टि का, थर्ड स्क्वेड्रन ऑफ वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, टाइम साइकिल, वो है कॉपर एज, त्रेता युग, द्वापर युग, दूसरे युग को कहते हैं त्रेता युग। तो सतयुग है फोर लेग्स पूरा स्टेबल, और त्रेता है 3 लेग्स, एक टांग टूट गई, थोड़ा कम हो गई है प्योरिटी। द्वापर है 2 लेग्स, प्योरिटी 50% बची है। और द्वा मीन्स दो होता है, और दो हो गए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर अपने आप में ओरिजिनल मेटल होता है, कॉपर नहीं होता है। कॉपर जिंक एंड ब्रास को मिला करके बनता है, मिक्सचर है, ऑलरेडी मिक्सचर है। तो जो कॉपर एज आई है, द्वापर युग आया है, दैट्स द टाइम ऑफ मिक्सचरिटी, इट्स द इवनिंग टाइम ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया की सांझ ढल गई है। अब गोल्डन एज में प्योरिटी 100% थी, सिल्वर एज में 85% भी, तो भी बहुत हाई परसेंटेज है। पाप का नाम निशान नहीं था, दुख का नाम निशान नहीं था। गोल्डन एज सिल्वर एज में ब्राइटनेस, लाइट लाइट लाइट, नो डार्कनेस एट ऑल, कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं, क्योंकि आत्माओं की वो जो घर से लेके आए हुए थे ना 7 एनर्जीज, उसका स्टॉक चल रहा है अभी। अब जब द्वापर युग आता है तो ये इवनिंग है, दुनिया की सांझ ढल गई है। शाम को क्या होता है, रोशनी में अंधेरा मिक्स होने लगता है, उसी को शाम बोलते हैं ना। और जवानी के बाद बुढ़ापे से पहले प्रौढ़ अवस्था आती है, उसमें जवानी में बुढ़ापा मिक्स होने लगता है, अभी बूढ़े हुए नहीं है, लेकिन चश्मा लगने लगता है, थोड़ा बॉडी पेन्स आने लगती है, झुकना मुश्किल लगने लगता है, बहुत सारे कामों में रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं ना, 40 से 60 के बीच ये वाला टाइम होता है। तो ये वाला टाइम है दुनिया का जहाँ बहुत कुछ रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आने लगती है, ईगो आने लगता है, ईगो से बॉडी कॉन्शियसनेस से फिर लस्ट आ जाता है, लस्ट से फिर बच्चे पैदा किए तो अटैचमेंट बहुत आ जाता है, अटैचमेंट वाले के लिए और जमा करूं और कमाऊं, इसका भी छीन लूं, उसका भी, भाई भतीजावाद, तो ग्रीड पैदा हो जाता है। जहां ग्रीड लस्ट ईगो पूरा नहीं होता है, वहां पर एंगर आ जाता है, क्रोध रिवेंजफुलनेस जो अपने को चाहिए वो नहीं मिला, चाहे लस्ट चाहे ग्रीड चाहे हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहां एंगर एंड वॉयलेंस वो आने लगता है। इस तरह से अच्छाई में बुराई मिक्स होती है। ये शाम के टाइम पर मिडल एज है, ये द्वापर युग है, कॉपर एज है। क्लियर हो रहा है? फोर्थ स्क्वाड्रन काला कर दिया है उधर आप सबके लेफ्ट साइड। काला क्यों कर दिया है? कौन आया काले रंग में? कौन आ गया? हमारा जाना पहचाना हुआ है ना, इससे तो हम रोज मिलते रहते हैं, उसी में जी रहे हैं। तो ये कल युग है, कल है कलेश का युग, आयरन एज, चीपर मेटल है ये बिल्कुल, कहां गोल्ड कहां आयरन। तो आयरन एज में आकर के मत्ती मारी जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऑल सेवन एनर्जी जीरो हो जाती है, प्योरिटी जीरो, इम्प्योरिटी 100%, डार्कनेस है, अंधेरा, घोर अंधेरा आ जाता है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं और बड़े बड़े दुख आते हैं। और जहां ऐसा होता है, कहते हैं घोर अंधेरी रात के पश्चात स्वर्णिम प्रभात का उदय होता है, कहते हैं ना, हर अति का अंत होता है। कैसे होता है? बहुत सिस्टमेटिक, नेचुरल लॉज इतने एक्यूरेट और इतने परफेक्ट है, उनको न जानने के कारण कई बार हम भगवान को, गॉडली पावर को एक डिक्टेटर के नाम से समझते हैं कि भगवान की मर्जी, जैसे भी किस्मत की लकीरें लगा दी, किसी को फूल दे दिए, किसी को कांटे दे दिए, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। अरे भगवान खाली नहीं बैठा है ऐसी पार्शियलिटी करने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। जितने एक्यूरेट नेचुरल लॉज है उतने एक्यूरेट कार्मिक लॉज है। कर्म का भी एक संविधान है और उसी अनुसार नेचर चलती है, नेचुरल लॉज चलते है। और भगवान अपने बनाए हुए नियम तोड़ता नहीं है। इसमें एक बात हमको समझ लेनी है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, जो हम अब तक समझते आए कि सब कुछ भगवान करता है। चोर चोरी कर रहा है तो भी भगवान के हुक्म से, कोई महान कर्म कर रहा है तो भी उसकी मर्जी, दुनिया में भला हो रहा है तो उसकी मर्जी, बुरा हो रहा है तो उसकी मर्जी, ऐसा ही पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से हिलता है। कोई रो रहा है तो उसकी मर्जी, हंस रहा है तो उसकी मर्जी, ऐसा ही है। सब कुछ भगवान करता है, सब कुछ भगवान नहीं करता, बोलिए, भगवान सब कुछ नहीं करता। कर्म के आधार पर है, तो कर्म कौन करा रहा है हमारे से? हम खुद कर रहे हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फिर जैसा करता है वैसा भरता है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कर्म का सिद्धांत है, वो हमारे पर लागू होता है। पर विचार करना पड़ेगा, फिर भगवान क्या करता है? हमने ही कर्म करना, उसी अनुसार फल मिलना, फिर उसका रोल क्या है? भगवान सब कुछ नहीं करता, ध्यान से फ्रेज सुनना, परंतु जो कोई न कर सके वो भगवान करता है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जो कोई न कर सके वो करता है। हिज पावर इज लाइक अ प्रेसिडेंट इन अ कंट्री। प्रेसिडेंट क्या करता है किसी देश में? कहते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर की पावर्स खत्म हो जाती है, वहां से प्रेसिडेंट की पावर शुरू होती है, उसके पास वीटो पावर होती है। जहां देश में अव्यवस्था छा जाए तब प्रेसिडेंट रूल आता है इमरजेंसीज में, और तब वो जो चाहे वही करेगा बेस्ट। ऐसे ही सब कुछ भगवान नहीं करता है, लेकिन संसार चक्र में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ होपलेस हो जाता है, तब वो एंटर करता है और वो करता है जो कोई ना कर सके, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेटो पावर। वो देकर के आत्माओं को दुखी से सुखी, पतित से पावन, कलयुग को सत्ययुग, रात को दिन बनाता है। इसलिए वो प्योरीफायर कहा जाता है। जब तक हमारी कर्म गति साथ देती है, वो इंटरफियर नहीं करता है, करने देता है। सतो रजो तमो, जब हम तमो प्रधान हो जाते हैं तब वो इंटरफियर करता है, उससे पहले नहीं। उसकी भी रीजनिंग है, रीजनिंग है। जैसे तीसरे युग में कॉपर कलर है, उसमें दिखाया सांझ ढल गई है दुनिया की, तो हम नेचुरल लॉ अनुसार महसूस करते हैं जब बाहर रोशनी घटने लगती है, अंदर अंधेरा हो जाता है पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना काम आसान करने के लिए अंदर कुछ लाइट जला लिया करते हैं, ताकि काम आसान हो जाए। बाहर अभी रोशनी है, बाहर की नहीं जलाते है। अभी भी देखो हमने अंदर जलाई हुई है, बाहर ठीक है। अब बाहर जब अंधेरा और बढ़ने लगता है तो हम बाहर की लाइट्स भी जला देते हैं, और बढ़ने लगता है हम स्ट्रीट लाइट्स भी जला देते हैं, और बढ़ने लगता है फ्लड लाइट्स जला देते हैं। हमने सुना था अमेरिका ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, वो इतनी लाइट देता है जैसे सन लाइट होती है, ताकि अंधेरे से लड़ा जा सके। तो स्टेडियम होते इतनी फ्लड लाइट्स जो आपको एक सुई भी दिखाई दे जाए, इतनी उस पर छोड़ देते है। ऐसे ही इस सृष्टि चक्र में होता है, जब मिडल एज आता है, द्वापर युग आता है, अच्छाई में बुराई मिक्स होने लगती है, बुराई पाप कराती है, तो सुख में दुख मिक्स होने लगता है पाप के रिजल्ट में। तो ऐसे टाइम पर ऊपर से भगवान के पास से कुछ 100% प्योरिटी वाली लाइट्स नीचे उतरती हैं। पहले वाली आत्माओं की लाइट कितनी हो गई, 50%, है ना। 100 वोल्ट का बल्ब था, 50 वोल्ट का रह गया। अब नीचे 50% प्योरिटी वाली आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं भगवान ने ऊपर से 100% प्योरिटी वाली भेजी, वो हमारे लिए एक लाइट का काम करती है। ये समाज सुधारक, धर्म पिताएं होते हैं, जो आकर के हमको अट्रैक्ट करते हैं, हमको डिवाइन मैसेजेस देते हैं, उन मैसेजेस को फॉलो करने लगते हैं, थोड़ा जीवन आसान होने लगता है। कोई पूजा भक्ति करता है, कोई समाज सेवा करता है, कोई देशभक्ति करता है, कुछ वैल्यूज एडॉप्ट करते हैं, तो वो जो गैप आया था ना, अंधेरा आया था, कंपनसेट होने लगता है। ये वाला ऑर्डर द्वापर से लेके कलयुग तक चलता है। इस साइकिल में रिलीजन्स एस्टेब्लिश होते हैं, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, जीसस आए, शंकराचार्य आए, एस्टेब्लिश होते गए। लेकिन एक और लॉ है, कितनी मर्जी लाइट्स ऑन कर लो, आर्टिफिशियल सन बना लो, अंधकार को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। रात को घोर अंधेरी रात होना ही है। ऐसे ही मिडल एज से, द्वापर से हमारे रिलीजियस हेड्स आए, एक से बढ़ के एक, उनके मानने वाले उन्हीं को भगवान मानते रहे, इतने वो ग्रेट थे। नो डाउट वो ग्रेट थे, उनके लिए वही भगवान थे। इन सब के आ जाने के बावजूद भी संसार को द्वापर से कलयुग और कलयुग से घोर कलयुग बनने से रोका नहीं जा सका। अब के 100 साल का इतिहास ही देख लो, आप में से कोई 60, 70, 80 वाले भी बैठे होंगे, यही वाला इतिहास देख लो, कितने धर्म बढ़ गए हैं, कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे घटे हैं कि बढ़े हैं? बढ़े है। पूजा पाठ भक्ति रिचुअल्स घटे हैं कि बढ़े हैं? धर्म उपदेशक घटे हैं या बढ़े हैं? बोलिए। पाप भी घटा नहीं है, बढ़ता गया, ज्यो ज्यो दवा की मर्ज बढ़ता गया। ऐसे ही जब घोर अंधेरी रात हो जाती है तब लाइटों से काम नहीं चलता है, सन हैज टू कम, तब सवेरा होता है। ऐसे ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अब बूढ़े के लिए कोई सोचे इसका इतना इलाज कराऊं, इतना मेडिकल साइंस डेवलप हो गई है, इसको फिर से बच्चा बना दूं। हाँ भाई डॉक्टर्स, कोई है ऐसा प्लान? बूढ़े को वापस जवानी कर दो, बच्चा नहीं तो कर सकते? किसको लगता है कर सकते? कर सकते ऐसे वापस दौड़े, नी रिप्लेसमेंट कर दो, हार्ट रिप्लेस कर दो, अभी ब्रेन रिप्लेस नहीं होने लगा, अगर वो भी हो जाए तो कुछ भी कर दो, आर्टिफिशियल हाथ पैर और डाल दो, एक रोबोट तो क्रिएट कर सकते है, लेकिन बूढ़े को जवान, जवान को बच्चा, बैक गियर का लॉ नहीं है नेचर में। रात से शाम नहीं होती है, शाम से दोपहर नहीं होती, बैक गियर लगता ही नहीं है। ऐसे ही सृष्टि चक्र में जो इतना पाप बढ़ता जा रहा है, रिपेयर नहीं होता है, इट कम्स टू एन एंड। जैसे बूढ़े को मरना पड़ता है, बूढ़ा मरता है तो बच्चा बनता है, नए सिरे बन सकता है। रात को भी मरना पड़ता है तो दिन आता है, अंधेरा चला जाता है, रहता ही नहीं है, तो सवेरा, गोल्डन डॉन, प्रभात के बाद सवेरा, उदय होता है। ऐसे ही ये सृष्टि चक्र में कलयुग को सुधारा नहीं जा सकता। पंचवर्षीय योजनाएं बना लो, साइंटिफिक रिसर्च कर लो, कितना मर्जी प्रोग्रेस कर लो, डेवलप्ड कंट्रीज आर देयर, मशीनरी ऐसी बना दी। हमको किसी ने वीडियो भेजा, चाइना ने एक रोबोट लेडी बनाई है, पूरा वाइफ का काम करेगी, बातें भी करेगी, खूबसूरत भी है, सब कुछ करेगी, सिर्फ जान प्राण नहीं है उसमें, जिंदा नहीं है, मशीन करंट से चलती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, वाइफ की नहीं कर सकते, अपनी भी नहीं कर सकते, अच्छी जरूर है, परंतु ध्यान देना इस बात पर, गोल्डन एज वापस नहीं ला सकती है। ये मशीनें, रोबोट बना दो, उड़ने वाली कार बना दो, इंसान को कुछ ऐसा दे दो ऐसे फ्लाई करे, इवन देन गोल्डन एज, यू कैन क्रिएट गोल्डन एज। कौन से वाली गोल्डन एज जिसमें इंसान परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, कोई आपस में लड़ता नहीं, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत, सारी सृष्टि एक परिवार की तरह रहती है। राजा रानी सोने के महलों में है तो प्रजा भी सोने के महलों में है, दास दासी नाम नहीं है। राजा के जो कर्मचारी हैं वो राजा के बच्चे अपने को फील करते, राजा भी उनको बच्चों जैसा डील करता, जस्ट कुछ काम बायफ्रिकेट किए गए हैं, सबके सिर पर डबल ताज है, सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाम निशान नहीं, फुल ऑफ 7 एनर्जीज, 100% peace, purity, happiness, bliss, true love. शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं, घी दूध की नदियां बहती हैं. परफेक्ट नेचर, परफेक्ट सोल. आज कितनी इंप्रूवमेंट कर लो, क्रिएट कर सकते हैं ये सब, क्रिएट कर सकते हैं. ये तो वैल्यूज है ना, प्योरिटी है. इसके लिए गॉड हैज टू कम. जैसे रात को दिन बनाने के लिए सूर्य को आना पड़ता है, बूढ़े को बच्चा बनाने के लिए मौत को आना पड़ता है, कलयुग को सत्युग बनाने के लिए, मानव को अपवित्र से पवित्र बनाने के लिए, मानव मीन्स सोल्स ना, ह्यूमन सोल्स, उनको भी इम्प्योर टू प्योर बनाने के लिए, प्योरेस्ट डिग्री वापस 100%, गॉड हैज टू कम. ही इज द प्योरिफायर. वो हमारा चार्जर है, हमको वापस चार्ज कर सकता है. इसलिए कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः. जब जब अति धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं. धर्म की हानि, धन की हानि नहीं बोला. धर्म मतलब कैरेक्टर, वैल्यूज. आज इतनी डेवलपमेंट होने के बाद भी जिनके नाम लिए, डिप्रेशंस, सुसाइड्स, डाइवोर्स सब बढ़ते जा रहे हैं ना, साइकोसोमेटिक डिजीजेस, फैमिली ब्रेक्स बढ़ते जा रहे हैं ना, सुख घटता जा रहा है ना, तो असली क्या चाहिए हमको, मशीनें या सुख शांति, धन दौलत या सुख शांति? आज की दुनिया में भी स्वर्ग बनना है जरूर, बना है जरूर, पर रावण का बना है. रावण के पास भी तो सोने की लंका थी ना, रावण के पास भी 9 निधि 12 सिद्धि थी ना. रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था. और जितना बड़ा विद्वान उतना बड़ा मूर्ख था, जितना बड़ा भक्त था उतना बड़ा भगवान का दुश्मन था. भक्ति भी भगवान की दुश्मनी भी भगवान से की. विद्वता इतनी और मूर्खता क्या की, अपनी मौत का काम किया. अमरत्व का वरदान लेते अपने को मारने की योजनाएं बना बैठा. एक ऐसी हस्ती जिसने काल को पाए से बांध लिया था. कहते हैं इंद्र जिसका पानी भरता था, पवन देव जिसको पंखा करता था, अग्नि देव जिसके यहाँ खाना पकाने आता था, ऐसा रावण. वो वाली लंका, वो वाला स्वर्ग तो अभी भी है. आज के मानव ने भी काल को पाए से बांध लिया है. डेथ जितनी मर्जी डिले कर दो, किसी की वेंटिलेटर पे डालो, आर्टिफिशियल ब्रेथ पर चलाए जाओ, चलाए जाओ, क्या पता चलता है. हमने मौत को तो बांध लिया है पाए से, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाए हैं. लाइफ स्पैन भी बढ़ा सकते हैं. आज भी इंद्रदेव हम सबका पानी भरता है. कहां तो दूर दूर कुएं से, नदियों से पानी लाना पड़ता था, आजकल तो नल खोलो पानी आता है. इंद्र हमारा पानी भरता ही है सब जगह. पवन देव हमको ठंडा गरम जैसा मर्जी पंखा चाहिए, बटन दबाओ पंखा करता है. अग्नि देव आजकल गैस का बटन दबाओ, उनकी भी कितनी एडवांसमेंट आ गई है. आजकल तो इंडक्शन, दिस एंड दैट, जहां मर्जी अग्नि देव को इनवाइट कर लो. पहले तो लोग लकड़ियां जला करके मंत्र उच्चारण करते रहते थे, अग्नि देव आओ 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 आओ, कहां से मुश्किल आते थे. और अभी तो हमने बस कर लिया, उनको बटन दबाओ आना पड़ता है उनको. तो ये सब चीजें बस हो गई है, फिर भी रावण की पूजा नहीं होती, राक्षस माना जाता है, भगवान का दुश्मन है. तो ये आज रावण राज हो चुका है पूरा. ऐसे टाइम पर राम की जरूरत है, जो रावण को मार सके, एक हनुमान की जरूरत है जो सोने की लंका को अपनी पूंछ जला के जला सके। लंका यूं ही नहीं जलती है, पहले समुद्र लांघना पड़ता है, उड़ना पड़ता है, फिर पूंछ जलानी पड़ती है, रावण को चैलेंज करना पड़ता है। पूंछ जले बिना लंका नहीं जलती है। समुद्र कौन सा पार करना होता है? भव सागर, सुरसा जीतनी होती है, सारी कामनाएं पार करनी होती है। भव सागर पार मतलब वर्ल्डली अटैचमेंट्स, वाइसेस, उन सबको कोई क्रॉस करता है तो हनुमान बनता है, सीता तक पहुंचता है, राम का मैसेज पहुंचाता है। सीता कौन है? आत्मा सीता है, परमात्मा राम है, उसका भी मैसेज आया है। हे आत्मा सीते, तुम रावण की जेल में बैठी हो, अशोक वाटिका में भी बैठी रो रही हो। अशोक होता है जहां गम न हो, पर अशोक वाटिका में सीता को शोक बहुत था, एक साल बैठी रोती रही। तो हम सबके पास भी अशोका चीजें तो बहुत है जो गम दूर करना जानती हो, पर हम सबको गम भी बहुत है। आत्मा रूपी सीता रावण की जेल में बैठी राम के विरह में रो रही है, तो हनुमान आता है, राम का संदेशा देता है, सीते तुम निश्चिंत हो जा, तेरा राम आ गया है। देख मेरी मुद्रिका, देख ये राम की, ये राम आ गया है। और लंका जला आया हूं मैं, बस राम आने वाला है, तेरे को लेके जाएगा। अब ये कौन है हनुमान? आपको हनुमान की कहानी सुनाती हूँ थोड़ी सी आज। हनुमान वो जो सीना चीर के दिखाए, देखो मेरे दिल में राम। हम सब डॉक्टर्स बैठे हैं, जानते हैं ऐसा सीना चीरा कोई जाता नहीं है, अंदर कोई फिजिकल बीइंग कोई बैठता नहीं है, और यादों का स्थान भी कोई ऐसे सीने में कोई बंदा बैठा वो नहीं होता, वो मेमोरीज में होता है। लेकिन हनुमान ने सीना चीर के दिखाया मेरे दिल में राम है। वो कौन हनुमान है? किसने सीता खोजी और राम के दर्शन कराए? वो है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा जिनके तन में निराकार शिव ज्योति ने प्रवेश किया 1937 में, आज के इस कलयुगी समाज की दुर्दशा देख करके कई लोग सवाल करते हैं, कहां सोया है रे दुनिया बनाने वाले, देख तेरी दुनिया में अंधेर मचा है। दुनिया बनाने वाला कहता है, मैं नहीं सोया हूं, मैं तो आ गया हूं, सूर्य चमक रहा हूं, तुम सोए पड़े हो, आंखें खोलो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हम भगवान को जगाएंगे या भगवान हमको जगाएगा? बोलो, कौन किसको जगाएगा? भगवान हमको जगाएगा ना। फिर मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाते हैं? भगवान को जगाते हैं हाँ? माता के लिए भी गीत गाते हैं, सुत्ती हैं ते जाग 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 श्रीराम वाली, माँ भी सोई है, भगवान भी सोया है, कहाँ सोया है रे दुनिया बनाने वाले, ये नहीं पता हम सोए हैं। हम सोए, एक वो नींद होती है जो रात को की जाती है, अच्छी होती है, वो रिफ्रेश कर देती है, लेकिन दूसरी नींद बड़ी खतरनाक है, उसमें मानव सो गया है। वो कौन सी नींद होती है? कौन सी? अज्ञान नींद। ज्ञान के नयन खोलते हैं भगवान हमारे। अब सोच के देखो, भगवान को धरती पर आना है, भगवान हम समझ गए निराकार होता है, और उसका फॉर्मूला भी हमने समझा है, भगवान वो जो जन्म मरण से सदा मुक्त हो, अजन्मा होता है, अकर्ता अभोक्ता होता है, जन्म मरण के चक्र से सदा मुक्त है, और उसी के लिए कहते हैं जब जब पाप बढ़ता है मैं आता हूं, अब जन्म लेना नहीं है और आता हूं, तो कैसे आएगा? जन्म लेना नहीं है, पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म लेगा तो प्राइवेट बॉडी हो जाएगी, और प्राइवेट बॉडी जो होती है ना, उसको पालना पड़ता है, किसी को मम्मी किसी को डैडी बोलना पड़ता है, और भगवान किसी को मम्मी और किसी को डैडी बोलेगा तो वो भगवान ही नहीं रहेगा, वो सदा सबका पिता है। पर आना जरूर है दुनिया में, और सिर्फ निराकार आ जाए तो हम पहचान जाएंगे उसको, ऐसे ज्योति चमके और चली जाए कोई नहीं पहचान पाएगा। इसलिए वो कहता है, मैं जब जब दुनिया में आता हूं पर काया प्रवेश करता हूं, पराए शरीर का आधार लेकर के उनके द्वारा सत ज्ञान दे करके सबकी आंखें खोलता हूं। वो पराया शरीर भी कैसा होना चाहिए? अब भगवान ने किसी और के शरीर में आना है तो वो कैसा होगा? छोटे बेबी का शरीर लेगा भगवान या ग्रोन अप बॉडी चाहिए? क्या कहते हैं, छोटे बच्चे में आ जाए नहीं चलता है? हम बच्चे का दर्शन करने चले जाएं, सब भगवान जी आ गए, प्रार्थना करें, मुक्ति दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे भगवान सृष्टि का माँ बाप है, और उसको पराए मकान में आके काम करना है तो मकान फर्निश्ड चाहिए उसको काम करने के लिए। तो इसलिए ब्रेन बच्चे का जो होता है ना, फीडेड नहीं होता है, उसमें लैंग्वेज भी नहीं होती है, सॉफ्टवेयर ही नहीं डला है, कंप्यूटर काम कैसे करेगा? तो इसलिए भगवान को आके ग्रोन अप बॉडी लेनी होती है, क्योंकि उसका ब्रेन यूज करता है भगवान, उसका माउथ यूज करता है, और उसके द्वारा क्या करेगा? आके जो पाप कर रहे हैं उन सबको मार देगा। भगवान जब दुनिया में आएगा क्या करेगा? कैसा वाला आएगा भगवान? सब पापियों को मार देगा। किसी किसी ने तो सोचा हुआ है, हम बहुत दुखी होके रात को सोए हुए होंगे, किसी दिन आधी रात को दरवाजा खड़केगा, दरवाजा खोलो बेटा मैं आ गया, मांगो क्या चाहिए, और हम अपनी लंबी सी लिस्ट सुनाएंगे और भगवान जी देके चले जाएंगे। ऐसे ऐसे वाला भगवान आएगा, फिर हम जो मांगेंगे सब कुछ दे जाएगा? नहीं, मांगने वाला नहीं देता है, जो हमें चाहिए वो देता है, मांगने वाला नहीं देता है। एक अपने यहाँ पोस्टर बनता था पहले, जिसकी हेडिंग थी प्रार्थना जो सुन ली गई, उसकी लास्ट दो लाइंस थी, मैंने भगवान से जो मांगा था मुझे वो नहीं मिला। ऊपर हेडिंग है प्रार्थना जो सुन ली गई, और उसकी सेकंड लास्ट लाइन है, मैंने भगवान से जो मांगा था मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। क्योंकि हम सबको तो ताली बजानी चाहिए ऐसी बात पे, हम सबको तो मांगना भी नहीं आता ना क्या चाहिए। तो वो ज्ञान सागर ऑल नॉलेजफुल है, जानता है इनको क्या चाहिए। तो 1937 में उसने, परम ज्योति ने, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और उनको एक नया नाम दिया। पहले उनका नाम दादा लेखराज था, हीरों के व्यापारी थे, बड़े भारी भक्त थे, पर भूल गए थे कि ये कलयुग एंड में जो हूं वैसा ही नहीं उतरा था, गोल्डन एज में मैं ही नारायण था। हम में से किसी को याद है क्या कि हम सब जब गोल्डन एज में उतरे थे? उतरे तो थे ना, कोई आज ही तो नहीं उतरा है ना ऊपर से। अगर जन्म से भी किसको थोड़ा दुख प्रॉब्लम्स थी तो उससे भी सिद्ध होता है कि इसी जन्म में नहीं उतरे है। अगर कुछ मैल लगी हुई है थोड़ा पहले के आए हुए हैं, कोई मैला गंदा मकान दिखा के बोले ब्रांड न्यू कल ही कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है, आप मानेंगे? बोलेंगे यूज्ड लग रहा है भाई। अगर कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम्स है तो यूज्ड सोल, यूज्ड बॉडी तो बीमारियां आई है, ब्रांड न्यू जब आप उतरे थे, सोच के देखो एक बार, सोचो बहुत मजा आएगा। एट फर्स्ट परम धाम से जगमग सितारे तेजो में धरती पे आए थे, डिवाइन बॉडी, तो कैसे थे आप? प्रिंस प्रिंसेस कृष्णा के साथ खेलते थे, नारायण रूप थे, लक्ष्मी रूप थे। सोच के देखो आपकी ही मूर्तियां मंदिरों में रखी हैं, आप भूल गए हैं कि मेरी मूर्ति है तो जाके माथा टेकते हैं, मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। अरे अपनी मूर्ति है, जैसे समझो महात्मा गांधी कितने ग्रेट थे अपने जन्म में, वो शरीर पूरा हो गया, समझो इस जन्म में हो कोई गांधी जी, और देख रहे हैं गांधी जी के स्टैच्यू, गांधी जी का म्यूजियम, उनकी लाइब्रेरी, और भी उनके साथ बहुत सारे दोस्त है। सबसे ज्यादा गांधी के स्टैच्यू से लगाव किसको होगा? किसको होगा जो पिछले जन्म में खुद गांधी जी था? अब वो सबसे पहले माला चढ़ाने वही जाएगा, गांधी जी के नाम पर कोई रेवोल्यूशन छेड़ना होगा वही आगे आएगा। कि मानो गांधी की बातें कितनी ग्रेट थी, मानो मानो मानो, क्योंकि वो ग्रेटनेस वाली वही आत्मा खुद है, खुद है। ऐसे ही हम सबको क्यों ये देवी देवताओं की स्टोरीज पसंद आती है, उनकी मूर्ति देखते माथा टेक देते है, हम ही थे ऐसे ही। ये प्रजापिता ब्रह्मा भूल गए थे कि मैं श्री नारायण था, परम ज्योति ने इनमें प्रवेश किया, इनको पहला दर्शन कराया, विष्णु चतुर्भुज बहुत तेजो में आया इनके सामने, आकर के बोलता है विष्णु अहम विष्णु चतुर्भुज तत् त्वम, जो मैं हूँ विष्णु चार हाथ वाला वही तुम हो, वही तुम हो, वही तुम हो। ये घबरा गए, मैं विष्णु कैसे हो सकता हूँ, मैं विष्णु कैसे, मैं कैसे? एडवांस कोई आपको बोल दे जी आप ही राम हो, आप ही नारायण हो, आपको नहीं, हम तो गृहस्थी लोग है भाई, आरती गाते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, नहीं नहीं मैं नहीं। साइकिल नहीं याद है ना कि हमारा भी ये गोल्डन डॉन था, सोल ऑन अ जर्नी, हम बहुत लंबी यात्रा पार करके आए हैं, बहुत बड़ी काली कोयले की सुरंग से क्रॉस किया है, काले हो गए, भूल गए व्हाइट ड्रेस पहन के आए थे। तो ऐसा ही इनके साथ था, पहला साक्षात्कार वो कराया, विश्वास नहीं हुआ, गुरु जी के यहां गए, गुरु से पूछा क्या देखा मैंने, गुरु जी के उत्तर से लगा कुछ बात स्पष्ट नहीं हुई है, बहुत वैराग सा आने लगा। एक और साक्षात्कार हुआ, इसमें देखा सारी पुरानी दुनिया विनाश हो रही है, बम फट रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, अटैक हो रहा है, मूसलाधार बरसात हो रही है, सब लोग मर रहे, कट रहे, खत्म हो रहे, रोने लगे, बस करो प्रभु मोहिनी रूप दिखाओ, रोने लगे। क्या हुआ? वैराग और बढ़ गया कि ये सब तो खत्म होने वाला है जिसको हम देखते हैं, बहुत वैराग बढ़ गया। घर वापस आए, गुरुजी का सत्संग चल रहा था, अचानक एक खींचा हुआ, उठ करके अपनी पूजा वाले कमरे में गए, बहू ढूंढती आई, क्या हुआ क्या हुआ, बाहर प्रवचन चल रहा है, ऐसे कैसे उठ गए? जैसे ही कमरे में कदम रखती है, एक विचित्र नजारा, साथ साथ फील करना, विचित्र नजारा देखा, पूरा कमरा लाल प्रकाश से भरा था, और वो लाल प्रकाश दादा लेखराज की आंखों से आ रहा था, धीरे धीरे मुंह जलने लगा, एक आवाज आने लगी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप मैं शिव हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। धीरे धीरे वो प्रकाश लोप हो गया। बहुत देर बाद दादा लेखराज अपने नॉर्मल फेस में आए, घबरा गए, कौन था कौन था कौन था, एक लाइट थी, एक माइट थी, उसने मुझे कहा तुम्हें नई दुनिया बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा। इनको दिखा था ऊपर से कोई सितारे आते हैं, कोई राजकुमार कोई राजकुमारी बन जाते हैं, फिर ज्योति प्रकट हुई कहती है ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। इसके बाद रोज निराकार शिव इनके अंदर प्रवेश होने लगे और आकर के इन्हें बताया ये नई दुनिया बनाने का काम तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं रोज तुम्हारे तन में आऊंगा और तुम्हारे द्वारा नई दुनिया बनाने का काम करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम्हें ही नई दुनिया का निर्माण करना है। धीरे धीरे एक सत्संग जुड़ने लगा। इतना आकर्षण होता था परम ज्योति का, जो आया सो बदल गया, जो आया सो फील करने लगा मैं राधे हूं मैं कृष्ण हूं। वो मस्ती चढ़ने लगी। 400 भाई बहनों ने जीवन समर्पित कर दिया। 14 साल वहां हैदराबाद सिंध में 37 से 50 तक तपस्या कराई उन्होंने, सोल कॉन्शियस होने की, अपने सारे रिश्तों का अनुभव कराने की, पूरा सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाने की, सारी मानवता के लिए आत्मिक भाई भाई की दृष्टि रखने की। 47 में पार्टीशन हुआ, लेकिन मुसलमानों के साथ उनका भाई भाई का व्यवहार रहा। मुसलमान न होने के बावजूद भी वो मारे नहीं गए। ये विचित्र इतिहास था उस टाइम का। 50 में भारत में आए, माउंट आबू में हेडक्वार्टर बना। तब भी ब्रह्मा बाबा में रोज शिव बाबा आते रहे। उनकी जर्नी आगे बढ़ती गई, बहुत प्योरिफिकेशन होता गया, पवित्र होते 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 1969 में प्रजापिता ब्रह्मा फरिश्ता हो गए। और सब बहनों को जो छोटी छोटी बच्चियां थी हैदराबाद सिंध में समर्पित हुई थी, देश में भेजा, विदेश में भेजा। आज पूरे विश्व में 140 देशों में उन्हीं बच्चियों ने सेंटर्स खोले जो दादियां कहलाई। आज यूएनओ में मेंबरशिप है, यूएनओ के एक्सॉक और यूनेस्को है, उसमें कंसल्टेटिव स्टेटस है ब्रह्मा कुमारीज का। कितने वर्ल्ड पीस मैसेंजर्स अवार्ड और कितने और तरह के अवार्ड मिले। दादी जानकी को 1976 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अ लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अवार्ड दिया। उनके मिरेकल्स तो कल डॉक्टर साहब से सुने आपने, वो एक नहीं थे, एक के तो पब्लिश हो गए। हमने ऐसे वाली अनेकों दादियां इन्हीं आंखों से देखी हैं, इन्हीं आंखों से भगवान का अवतरण देखा है। गुलजार दादी के तन में प्रजापिता ब्रह्मा के बाद उनके अंदर अव्यक्त अवतरण निराकार शिव का हमने इन आंखों से देखा है, इस मुख से उनसे बात की है, इन कानों से उनकी ईश्वरीय वाणी श्रवण की है और जीवन परिवर्तन हुआ है। मेरे जैसी 16 साल से बड़ी आयु की, 18-20 साल से लेके 60-80 साल तक की 45,000 बहनें अपना जीवन इस विद्यालय में समर्पित कर चुकी है। नॉट ए जोक। 16-16 साल की कुमारियां जो दुनिया में फैशन के नाम पर क्या नहीं कारनामे कर रही हैं, कितना लस्ट का तमाशा हो रहा है। यहां आकर के देखो पूरी बाजू का सफेद कपड़ा, मुस्कुराते चेहरे, प्रभु मिलन की ज्योत, जीवन समर्पित कर रही हैं। घरों में तो बच्चियां नाक में दम करती है, एक मोबाइल से दूसरा, आज बाइक, आज सिगरेट, आज ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या। माँ बाप डरे फिरते हैं और वो माँ बाप ने ये शिव शक्तियां पैदा की हैं। दुनिया में कहीं चली जाए अकेली शक्ति है, अष्ट शक्तियां साथ है। इसलिए वो कहता है जागो, मैं आया हूँ। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय न धर्म है, न मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, ईश्वरीय परिवार है। स्वयं भगवान आया है, सारे विश्व परिवार को पावन बनाने के लिए उसने एक शांति की क्रांति छेड़ी है, नथिंग एल्स। इसलिए यहाँ आने के लिए ना आपको धर्म बदलना है, ना आपको घर छोड़ना है, ना ड्रेसेस बदलनी है, लेकिन केवल उसके प्यार को अंदर समाना है। और वो जो पढ़ाता है उसको हम कई बार यहाँ शब्दों में आपने सुना है, मुरली कहते हैं। मुरली मीन्स म्यूजिकल गॉडली वर्शंस। उसमें म्यूजिक नहीं रहता है लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं। कल डॉक्टर हीना ने भी बताया ना, मुरली सुनती थी, शुरू शुरू में समझ कुछ नहीं आता था, लेकिन आज इतना समझ आता है कि दुनिया को समझा रही है। हमारी शिवानी बहन कैसे शिवानी बनी, उनकी मदर ने कहा था मेरा कहने पर तेरी माँ हो ना, एक बात मान ले, 40 दिन रोज मुरली सुन लेना। शिवानी बहन कहती है वो 40 दिन आज तक पूरे नहीं हुए हैं मेरे। इतना उसमें भगवान का प्यार मिला, कितने प्यार से वो हमें पुकारता है, मीठे बच्चे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हें पावन बना के साथ ले जाने आया हूँ, मुझे भी शरीर नहीं है, तुम भी शरीर में टेम्परेरी आए हो, अब देह का अभिमान भूलो, ईगो की चादर उतारो, आत्मा बनो, सोल कॉन्शियस होके मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे पाप सक कर लूंगा, मैं ब्लॉटिंग पेपर हूँ। कहते शिव ने जहर पिया, मैं पीता हूँ जहर, वो शंकर ने नहीं पिया, मैं पीता हूँ, मैं अपनी पवित्र किरणों से आपको छू देता हूँ, आपके पाप काम क्रोध, पाप मीन्स काम क्रोध, सक करता हूँ स्टेडली, तो मैं आया हूँ। ये हमारा ज्ञान नहीं है। आपको ये बहन जी बहुत अच्छा सुनाती है, कहाँ से सुनाती है, अपना क्रिएट किया क्या? कोई जंगल जाके तपस्या करके हमने कोई शास्त्र नहीं लिखे हैं ना पढ़े हैं, उसने पढ़ाया है, उसने अपनी शक्तियों से संवारा है, उस प्यार के सागर ने अपने प्यार में डुबो के सारे पाप छुड़ा दिए हैं। वरना तो हम भी इसी पापी जगत के ही थे, इसी जन्म में। सुनाया था आपको कितना गुस्सा करती थी मैं, तो बिगड़ी हुई थी। इसी जन्म में सुधार दिया उसने, अपने सारे नजारे दिखा दिए, और वो बिल्कुल इम्पार्शियल है, सबको एक जैसा प्यार देता है, एक जैसा ज्ञान देता है। सिर्फ जो समर्पित हो गए उन्हीं को, नौ परिवारों में रह के भी बराबर चांस है। हमको 40 साल पहले ज्ञान मिल गया, आज आपको आज मिल रहा है ज्ञान, इतना रिफाइन हो गया है, आज भी एक साल में आप 40 साल वाले जितनी प्राप्ति कर सकते हैं, आज भी वो चांस देता है। पिता है ना, पिता सब बच्चों को बराबर इनहेरिटेंस देता है। तो इस बात को समझते हुए यहाँ से वापस जाके रोज आश्रम जाना, आश्रम माना बाबा का घर। सो अपना घर, हम शिव बाबा के बच्चे है, बच्चे अपने घर जाया करते है, शिव बाबा की मुरली सुनना। हमारा बाबा टीचर है, हमको पढ़ाता है मानव से देव बनाने के लिए, हम नर नारायण थे वापिस उसने बना देना है, वो सब बेटरमेंट जो एक ह्यूमन लाइफ में चाहते है वो उसके करंट से मिलती है, वो दे रहा है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, सब तरह के धर्म जाति भाषा से ऊपर उठो, आत्मा हो जाओ, परमात्मा की संतान बन के ऐसा प्यार और शक्ति पालो जो दुनिया में एकता ला दो। ये धर्मों के झगड़े, ये जाति भाषा दूर कौन करेगा? शिकायत तो सारे करते हैं, दुनिया बिगड़ गई, सुधारेगा कौन? वो सीधा नहीं सुधारेगा, हमारे थ्रू सुधारेगा। पहले हमें पढ़ाएगा, फिर हमने दुनिया को जीवन से पढ़ाना है, जीवन की खुली किताब से। सिर्फ जबानी बोल देंगे भगवान आया, कोई नहीं समझ सकता, उससे क्या पाया है वो दिखा दो। कहेंगे लगता आपको भगवान मिला शायद, इतने कैसे सुधर गए हो, इतना कैसे शांत रहते हो, इतना कैसे प्यार देते हो। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव बने, उसके जैसे बने, ये आज संकल्प करो अंदर कि अब हमने जीना है तो दुनिया के लिए, यहाँ के रहने की बात नहीं है, घरों में रह के भी बहुत कमाल कर सकते हैं। टारगेट हाई करो, सिर्फ एक गृहस्थी चलानी, दो बच्चे पालने, कोई लक्ष्य होता है क्या, वो तो कोई भी कर लेता है। पशु पक्षी भी दो बच्चे पाल ही देते हैं, चुगा खिलाई देते हैं, क्या उतने के लिए जी रहे हो सभी? बेटे का एडमिशन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, बस एक कोठी है, बस इतना आराम से मरेंगे, ऐसे वाला आराम से मरना है क्या? ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल, दुनिया के लिए जीना है, दुनिया के लिए। दुनिया पर संकट आया है, काले संकट के बादल सब तरफ है, हम अवेकन लोग हैं, अवेकन है, भगवान से करंट लेना सीख रहे हैं। थोड़ा और सीखना, जाके कंटिन्यू करना बिना प्रैक्टिस के, ये सिर्फ ब्रेन शो रह जाएगा। हाँ वहां गए थे, बहुत अच्छा समझाते, जगह बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा होता है, उनके वहां सफाई बहुत अच्छी है, आप लोग भी जाना। हम वैसे के वैसे नो, अभी जाके रेगुलर जाके कुछ बन के दिखाना, ठीक है? लाइफ बोले, वो खुशबू आए प्योरिटी की, ठीक है? वर्ल्ड ड्रामा साइकिल जी भाई साहब, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं हो तो बाद में पूछेंगे। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू याद दिलाए। राइट, दो पावर्स, हम जो लास्ट बात कर रहे थे, पावर टू फेस, ध्यान रखना, लोगों को फेस नहीं करना है, वहां सरेंडर करना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं इफ यू वांट पीस बी रेडी फॉर द वॉर, लेकिन उसके लिए शक्तिशाली बनना है। शेर से खरगोश लड़ने से अपने आप डरेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अंदर इतने सशक्त हो जाओ कोई आपको बुद्धू बना ना सके, अंदर से इतना प्रेम स्वरूप हो जाओ जो कोई आपसे नफरत कर न सके, इतने सुखदाई हो जाओ कोई आपको क्रिटिसाइज कर न सके। ये पावर टू फेस, पावर टू फेस आपके सर्कमस्टांसेस से लड़ने का एक नया तरीका है, शांति का युद्ध है ये। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने बुरे करने वाले का भला करके कैसे किसी को झुकाया जाता है, उसके सैकड़ों एग्जाम्पल सेट किए। हैदराबाद सिंध में किसी ने एक उग्रवादी को, एक टेररिस्ट को शराब पिला के कटार दे के मारने भेज दिया, जाओ इनके बाबा को माराओ। क्या सबको बना रहे हैं, समझ नहीं पाए, वो आ गया मारने के लिए, ढूंढने लगा कहाँ है तुम्हारा दादा, मार डालूंगा। बहनों ने बाबा को बोला, बाबा दरवाजा बंद कर लो, कोई मारने आया है। बाबा ने कहा, नहीं मेरा बच्चा आया है, भेज दो अंदर। बाबा मारने आया है, शराब पिया हुआ है, कटार पकड़ा हुआ है, मारूंगा। बाबा ने कहा, बच्ची कहा ना, मेरा बच्चा आया है, भेज दो। भेज दिया, क्या करे, ऑर्डर था। जैसे ही आया दरवाजे पर, बाबा बाहें पसारे बैठे, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आओ बच्चे। उसकी कटार वहीं गिर गई, चरणों में पड़ गया, जार जार रोने लगा, मैं आपका कपूत हूं, पकड़ो ये कटार, मेरे को मार डालो। मारने आया था, मरने को तैयार हो गया, क्या था, प्यार की शक्ति। इतनी ताकत है प्यार में, ऐसा फेस करना बाबा ने सिखाया है। तो ये है पावर टू फेस, चैलेंज द चैलेंज, चैलेंजेस को चैलेंज करो, और उसके लिए कैसे भी लोगों, ध्यान रखो पावर टू फेस के लिए अच्छी टॉलरेंस चाहिए। उसके लिए अपने आप को कह दो, आई हैव नो माइंड टू माइंड, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आई हैव नो माइंड टू माइंड, नहीं तो माइंड, आई माइंड इट, आई माइंड इट कहते कहते सारी टॉलरेंस खत्म कर दी है। सेंसिटिविटी को फैशन बना दिया है। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, दूसरे को कहते हैं डेंजर, संभल के रहना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, रेड लाइट। क्या अच्छी बात है जो बोलते हैं सेंसिटिव। अभी भी हाथ खड़े कराऊ बहुत खड़े कर देंगे, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। सब चेंज करो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कमांड चेंज करो, बार बार बोलो आई एम सो स्ट्रांग, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेंसिटिव वालों को ये जरूर बोलना, अपने को बार बार बोलना है, फिर अ पावर टू कोऑपरेट। इट्स एग्जैक्टली टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट न समझ पाने के कारण उसका सटल लेवल दो मिनट में समझाती हूँ, बहुत कम का है। कि किसी भी कर्म के कुछ चेन रिएक्शंस होते हैं, चेन रिएक्शंस, और उस चेन रिएक्शन को हम नहीं जानते हैं। एक मोटी बात जान गए हैं कि आज की दुनिया में भलाई करने का जमाना नहीं है। करो भला मिलता बुरा, सबके पास एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स है। हमारे पास ऐसे रोने वाले बहुत आते हैं, बहन जी फलाने के लिए मैंने हड्डियां लगा दी, सारी उम्र की कमाई लगा दी, खून पसीना लगाया, इतना उसके लिए मैंने किया, क्या बताऊं। और जब मेरी बारी आई, मुझे जरूरत थी, तो उसी ने सबसे पहले उसी ने ठुकराया, धोखा दिया। है ना कोई एक आधी कहानी सबके पास। जिसके पास नहीं है ऐसी कहानी, वो खड़ा करो, कहानी है नहीं ऐसी कि हमने जिसका किया भला उसी ने किया हमारा बुरा, ऐसी वाली कहानी लगभग है सबके पास। अब ऐसे लोगों से मैं एक बात पूछती हूँ ऑलवेज कि अच्छा, जिसका आपने भला किया था, जब आपको मुसीबत आई, उसने आपका भला नहीं किया, काम नहीं आया, पर वो जो मुसीबत आई थी वो चली गई कि अभी भी है, तो क्या जवाब देते होंगे सारे? चली गई। वो तो भला हो ऊपर वाले का, उसने किसी दूसरे फलाने को भेज दिया, नहीं तो उसने तो नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इस बात को समझो, कर्म और फल का सिद्धांत एक नेशनलाइज्ड बैंक की तरह से चलता है। नेशनलाइज्ड बैंक समझो, आप दिल्ली में रहते हैं, वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने 1,00,000 रुपया जमा कराया और आप चले गए मुंबई, वहां जाके आपको 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वहां जाके ले सकते हैं, चाहे एटीएम से चाहे चेक से ले सकते हैं, ले सकते हैं। समझो आपने ले लिया वहां से 50,000 रुपया, आपका काम बन गया और आप वापिस आ गए दिल्ली। अब आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आप चले गए उसी बैंक में, और जिस भाई को आपने 1,00,000 रुपया पकड़ाया था, आप उसको कहते हो भाई मेरा 1,00,000 रुपया वापिस दे। उसने कंप्यूटर चेक किया, 1,00,000 नहीं 50,000 है, झूठ बोलते है तुम, तुमको 1,00,000 दिया था, अरे इसमें लिखा पड़ा मुंबई में तुमने 50,000 ले लिया है। अरे मुंबई में लिया है, वो तो भला हो वहां वाले का, बैंक वाले का, दिया तो तुम्हें था ना, तुम निकाले 1,00,000, नहीं तो केस करता हूं तेरे पर। मिलेगा केस करने पर भी? नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमने भला किया था एक का, उसने वापिस हमारा भला नहीं किया, दूसरे ने कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? भले का भला तो मिल गया ना, सुई कहाँ अड़ती है कि जिसको दिया वो ही दे। अरे जिसको दिया वो भिखारी था, भिखारी से भीख वापिस थोड़ी मांगी जाती है, वो तो लेने वाला पार्ट था उसका। भिखारी को तो सारी उम्र देना होता है, ऐसे तो नहीं 1 रुपया रोज दे के 30 दिन बाद बोलो 30 रुपया वापिस कर। ध्यान रखो, पुराना फिल्मी गीत, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10,00,000 देगा। ऐसे कर्म गति चलती है, इसलिए कहते हैं भला किए जा भले का फल जरूर मिल रहा है। इट्स पावर टू कोऑपरेट, जो इस तरह की कर्म गति जानता है वो बुरा करने वाले का भी भला करके कोऑपरेट करके यूनिटी क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज तो आजकल टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। तो अपने परिवारों को भी इस कर्म गति को समझते हुए जोड़ो, सहयोग दे करके, सहयोग मांगो मत, सहयोग देते जाओ खुले दिल से, तुम्हें भगवान देगा, तुम्हें भगवान देगा और एक का लाख गुना देगा। उस गीत में भी है ना, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब मनुष्यों से मांगने चल पड़ते हैं, तेरे को 100 रुपया दिया था वापिस ला। माँ बाप भी बच्चे को कहते तेरे को पाला था तू मेरे को पाल। अरे वो पालेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप जरा सी लिमिटेशंस हटा दो, रिजिडिटीज हटा दो, अनलिमिटेड हो जाओ, यूनिवर्स के हो जाओ, तो यूनिवर्सल लॉज इको की तरह जो बोलोगे वापस आपको देंगे अपने आप। ठीक है, क्लियर है? वापस जाके मेडिटेशन सेंटर्स ज्वाइन करने हैं, रेगुलर क्लास करनी है, बहाना नहीं लगाना है, टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो हमारे पास भी नहीं था, फिर भी अपना परिवार है तो हमको परिवार के लिए सेवा करनी करनी है। तो अपने लिए, अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए, जीवन को नर से नारायण बनाने के लिए रेगुलर पढ़ाई ये वाली राजयोग की आगे करनी है। अभी तो ट्रेलर दिया है यहाँ पर सिर्फ। ठीक है, ओम शांति। 5 मिनट साइलेंस करेंगे, 5 मिनट एकाग्र होके बैठेंगे, सभी सीधे होके बैठ जाएं।
तेज कदम चले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी।